देवियों सज्जनों, इस हफ्ते हमने शिवरात्रि मनाई। भारत में विशेष करके हिंदुओं में बहुत बड़ा पर्व है। थोड़ी सी चर्चा इस पर रखेंगे आज। शिवरात्रि फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात को मनाई जाती है। अमावस्या से पहले रात को लोग सेलिब्रेट करते हैं पूरी अमावस्या को। जनरली फरवरी और मार्च में आता है। शिव का अर्थ होता है मंगल, ऑस्पिशियसनेस, वेलफेयर, अच्छाई, भलाई, मंगल, यही शिव के अर्थ होते हैं। जैसे कि आप संध्या के समय मंत्र पढ़ते हैं, मेरे साथ मिलके बोल सकते हैं, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। जितने भी आप शिव के नाम सुनते हैं उस सब के नाम आपको यहां दिखता है, पर उनके मीनिंग देखिएगा सही में क्या मीनिंग है। नमः सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन टू द लॉर्ड इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ पीस एंड ब्लिस। शंकर का मतलब होता है ग्रांटर ऑफ और डूअर ऑफ पीस और ब्लिस, और शिव का मतलब होता है बेनेवोलेंट है, एंड शिवतराय च एक्सीडिंगली बेनेवोलेंट। आज के शिवरात्रि की चर्चा पर हम उस परम मंगलकारी परमात्मा परमेश्वर की उपासना करते हैं। परमात्मा परमेश्वर बा ईश्वर को ऋग्वेद में एक सुंदर मंत्र आता है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम मित्रम अग्नि वरुण मित्य माहु इत्यादि इत्यादि, कि एक ही सत्य है, सच एक ही है। पर विद्वान लोग, खास करके ये झगड़ा विद्वानों में है, अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबकी नॉलेज एक ही होता है, आफ्टरऑल जो रियलाइजेशन है सबका एक ही होता है, पर जब उसको वो बताते हैं, जब उसको एक्सप्रेस करते हैं, हर आदमी के अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है और यहीं से डिफरेंशिएशन पैदा होता है। वो परमात्मा ईश्वर सर्वव्यापक है, वो सबका मंगल करने वाला है, इसीलिए वो शिव है। शिव का दूसरा नाम जो, बात करने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर दें, जो चीजें हमारे वेदों में, उपनिषदों में, दर्शन शास्त्र में फैक्ट के रूप में, रियलिटी के रूप में बताया गया है, उन्हीं चीजों को पुराणों में कहानी के रूप में, मीथ के रूप में, स्टोरीज के रूप में, और उन्हीं चीजों का एक पर्सोनिफाइड फॉर्म के रूप में एक्सप्लेन किया है। जब हमारे समाज में ज्यादातर लोग हजारों सालों तक पढ़ाई लिखाई से वंचित रहे, दूर रहे, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई से, ऐसा नहीं कि कोई रिलीजियस पढ़ाई लिखाई से, देश जब आजाद हुआ तो भी हमारी पॉपुलेशन मुश्किल से 15-20% लिटरेट थी, लिटरेट पढ़ा लिखा नहीं, जिसको सिर्फ काउंटिंग वगैरह आता हो, तो आप समझ सकते हैं हजारों सालों से। तो लोगों को फिर रियलिटी से ज्यादा फिक्शन में मजा आने लगता है, मिथ में मजा आने लगता है। जैसे कोई आप गाना सुन के जितना आप एंजॉय करते हैं प्रवचन में उतना नहीं होता है, जब आप एक मूवी देखते हैं वो जितना आपको आनंद देता है उतना कोई लेक्चर सुन के नहीं होता है। ये ह्यूमन नेचर है, पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, जितना कम पढ़ा लिखा नेचुरली उसको उतना एंटरटेनमेंट ज्यादा अच्छा लगेगा, और हमने एंटरटेनमेंट के वे के रूप में हमने उन चीजों को एक पर्सोनिफाइड फॉर्म दिया मूर्त रूप दिया और उस रूप में हमारे सामने है। हम उन्हीं को लेकर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। वो शिव जो परमात्मा पुराणों में आते आते जो परमात्मा सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, पुराणों में वो अलग अलग तीन डिवीजन बन गए, तीन अलग अलग मूर्ति के रूप व्यक्ति के रूप में बन गए। मतलब एक ब्रह्मा बना जो सृष्टि करता है, एक विष्णु की कल्पना की गई, कल्पना की गई, ध्यान रखिएगा कल्पना शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, यहीं पर सारी झगड़े की जड़ है। तो विष्णु की कल्पना की गई आज प्रिजर्वर सस्टेनर, और महेश्वर की कल्पना की गई डिस्ट्रॉयर। पर एक्चुअली वो एक ही परमात्मा जो सारे संसार को सब तरह से पालता है, बाद में फिर हमने उसको अलग अलग रूप देने लगे। पर जो मजेदार बात है जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, शिव की, जिसको आप महेश्वर कहते हैं, ये महेश्वर का अर्थ ही होता है द सुप्रीम गॉड। और उसका काम क्या है जी? डिस्ट्रक्शन, बर्बादी करना, विनाश करना। शायद अकेला हमारी कल्चर है या हिंदू धर्म ऐसा है जहां ईश्वर को एक एडजेक्टिव है कि वो डिस्ट्रॉयर है। बाकी सब जगह तो गॉड बड़ा अच्छा अच्छा है, ये सब डेविल का काम है डिस्ट्रॉय करना। जब आप इमेजिनेशन पर जाते हैं, जब आप फैंटेसी पर जाते हैं तो आपको ये अच्छा लगता है, पर जब आप रियलिटी पर जाते हैं, डिस्ट्रक्शन क्रिएशन से अपोजिट नहीं है, इट्स द पार्ट ऑफ क्रिएशन, इट्स सप्लीमेंटिंग द क्रिएशन, इट्स मेक्स द पाथ फॉर द क्रिएशन। जब तक कोई चीज नष्ट होगा ही नहीं, दूसरी चीज पैदा हो ही नहीं सकता। आपका बचपन नष्ट नहीं होगा तो आप जवान कैसे बनेंगे? आपकी मूर्खता नष्ट नहीं होगी तो ज्ञान कहां से आएगा? अंधेरा नष्ट नहीं होगा तो दिन कैसे आएगा? दिन नष्ट नहीं होगा तो रात कैसे आएगी? नष्ट होना इट्स नॉट अपोनेंट ऑफ द पॉजिटिव, से सप्लीमेंटिंग है, उसके बिना वो आपकी फर्स्ट स्टेप है। जब आप रियलिटी को समझेंगे फिर आप ये नहीं कहेंगे कि डिस्ट्रक्शन इज द डेविल्स वर्क। ये तो साइकिल है, सिस्टम चलता रहता है। वो परमात्मा शिव है क्योंकि सबका भला करता है, सबका कल्याण करता है। आपके पैदा होने से पहले ही इंसान की, इवन इंसान का जो नस्ल है, जो ह्यूमन रेस है, उसके पैदा होने पहले से ही सृष्टि में ईश्वर ने सब कुछ बना करके रखा। जैसे आपके घर में बच्चा आने से पहले आप पूरी तैयारी कर लेते हैं, उस किस रूम में रहेगा बच्चा, उसके लिए घर बना देते हैं, खिलौने रख देते हैं, खाने पीने के सामान, जो भी छोटे बच्चे के लिए, ये आप करते हैं। ईश्वर क्या करता है? उसकी भी तो कुछ तैयारी रहती है। बच्चा आने से पहले मां के स्तन में दूध आने लगता है, हमेशा थोड़े आता है। इंसान आने से पहले ईश्वर ने संसार को खूबसूरत बनाया, फसल दिया, ग्रेन्स पैदा करवाए, पानी, हवा, ऑक्सीजन, जो कुछ चाहिए एक प्राणी को जीने के लिए सब व्यवस्था करी, फिर ह्यूमन बींग पैदा होता है। कि आपको कोई कमी ना रहे, इसीलिए वो शिव है। पर वो रुद्र भी है, शिव को रुद्र भी कहते हैं। क्यों? रुलाने वाला है। रुलाने वाला क्यों? क्योंकि उसी का काम है, जो पैदा हुआ उसको मरना है। जब एक आदमी मरेगा तो 50 लोग रोएंगे, जब कोई नुकसान होगा तो लोग रोएंगे, कोसेंगे भगवान को कि तुमने किया। पर इट्स ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, पार्ट ऑफ द नेचर, पार्ट ऑफ इट्स क्रिएशन। वो रुद्र है क्योंकि वो रुलाता है, वो शिव है क्योंकि वो कल्याण करता है, वो शंकर है क्योंकि सबका भला करता है। आपके पैदा होने से पहले ही सब भला करके बनाए रखता है। पुराना जब तक नष्ट नहीं होगा तो नया नहीं आ सकता ना। जब बुजुर्ग लोग रास्ता खाली नहीं करेंगे तो जवान लोग उस पोस्ट पर कैसे आएंगे, नई चीजें कैसी आएगी, नई इनोवेशन कैसी होगी, नई टैलेंट कैसे आएगी। इट सिंबलाइजेस दिस एस्पेक्ट ऑफ द नेचर। वो जो शिव है, शंकर है, रुद्र है, ये शिव और रुद्र दो अपोजिट लगते हैं ना। एक शिव मतलब कल्याणकारी, रुद्र मतलब विनाशकारी, पर एक ही व्यक्ति का नाम है। पुराणों में शिव को ही रुद्र कहते हैं, शिव को ही शंकर कहते हैं। ये दोनों एक ही का नाम है। क्यों? दोनों एक दूसरे से पूरक हैं। और ये नेचर का एक एस्पेक्ट है जिसको सिंबलाइज करता है ये शिवत्व और शंकरत्व। इसीलिए शिव का एक दूसरा नाम है भूतनाथ। आजकल तो भूतनाथ के नाम पर उसके चारों तरफ वो भूत प्रेतों की कल्पना कर लेते हैं पुराणों में। मैं बहुत बार कहा हूं ये भूत प्रेत वैदिक या हिंदू कंसेप्ट में नहीं आता है, किसी स्क्रिप्चर में नहीं मिलता। ये जो घोस्ट स्पिरिट, ये अब्राहमिक कल्चर का, अब्राहमिक रिलीजियस सेट का फिलोसफी है, कंसेप्ट है, जो हमारे यहां घुलमिल गया है। तो जो घुलमिल गया, हमने अपने देवताओं के साथ भी घोस्ट फ्रिस्ट को दिखाने लगे। भूतनाथ मतलब प्राणियों का, भूत मतलब प्राणी। संसार में कोई भी पैदा हुआ वो सब भूत है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो सभी भूतों को खुद में देखता है, खुद में सबको देखता है, वो भूत, वो सभी प्राणियों का नाथ है, लॉर्ड है, पालने वाला है। उसे त्रिनेत्र कहते हैं। आप जो शिव की जो मूर्तियां देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो मूर्ति आप लोग आजकल देखते हैं या पिक्चर देखते हैं, फोटो देखते हैं, मूर्ति पूजा को तो शुरू हुए 2000 करीब साल हो गया है, 1500-2000 साल बुद्धिस्ट जैन ट्रेडिशन के साथ साथ हमारे यहां मूर्ति पूजा का परंपरा शुरू होने लग गया। बुद्ध के बाद के पीरियड में शुरू हुआ। पर वो जो मूर्तियां बनती थी वो सिर्फ एक पत्थर होता था या एक सिंबॉलिक कुछ होता था, उसकी कोई आकृति फॉर्म नहीं होता था। जो आज आजकल सुंदर सुंदर फोटो देखते हैं या मूर्ति देखते हैं, ये 200-300-400 साल की पुरानी इतिहास है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। केरला में एक बहुत बड़े पेंटर हुए राजा रवि वर्मा, जो पौराणिक डिस्क्रिप्शन है अलग अलग देवताओं को, उसको लेकर उसने पिक्चर बनाने लगा, पेंट करने लगे, सरस्वती की, शिव की, विष्णु की। और तब नया नया प्रिंटिंग मशीन भी आया हुआ था, तो उसने प्रिंट किया, बहुत पॉपुलर हुआ। आज तक लोग सिर्फ डिस्क्रिप्शन पुराणों में पढ़ते थे, पर अब दिखने लगा। अब लोग उसको, वो जो पिक्चर है, जो कवि की, पेंटर की, आर्टिस्ट की जो पिक्चर है, पहले वो मॉडलों को लेकर के बनाता था, सुंदर लड़की को खड़ा करके उसकी पिक्चर बनाता था, उसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देवताओं की कर देता था, तो वो एक देवी का रूप ले लेता था। बाद में बड़ा पॉपुलर हुआ, लोगों को मजा आने लगा। अब धीरे 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 आप देखेंगे, आप किसी भी राज्य में जाइए भारत में, वहां की जो देवी देवताओं का रूप होगा वो वहां के लोगों के हिसाब से होगा, उनके सकल सूरत से मिलता जुलता होगा, है ना? ये जो आइकोनोग्राफी का कंसेप्ट आया बनाने की, कंसेप्ट था, पिक्चर या मूर्ति जिस रूप में बना वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। जिस रूप में आज आप देखते हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियां देखते हैं, एक कंसेप्ट है त्रिनेत्र की, परमात्मा की। वो त्रिनेत्र क्या है? हर एक के अंदर है। आप दोनों आंखों से दुनिया को देखते हैं और जो देखते हैं वो दुनिया की चीजें हैं जो आप जानते हैं, पर एक चीज जो आपकी खुद की पहचान है, जो आपके अंदर परमात्मा भगवान बैठा हुआ है, उसको जानने के लिए ये आंखें बेकार हैं। जब भी आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, धारणा करते हैं, ध्यान करते हैं, किसी भी रिलीजियन में हो, पहला काम आप क्या करते हैं? आंखें बंद करते हैं। जब आप आंखें बंद करते हैं तो अंदर की आंखें खुलता है। ऐसा नहीं कि बंद करते ही खुल जाता है, प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। अंदर की आंख मतलब आपकी अपनी अंदर की आवाज को। आप जब अपने काने बंद करते हैं तो आपके अंदर की आवाज सुनाई देने लगा, वो आपकी तीसरी आवाज है, तीसरा कान है। जब आप दोनों आंखें बंद करते हैं तो आपको वो ईश्वर की सत्ता अंदर रियलाइज होने लगेगा, वो आपका तीसरा आंख है। जब आप अपने नाक बंद करते हैं तो आपके अंदर से वो दिव्य डिवाइन स्मेल सुनाई देने दिखाई सूंघने लगेगा, वो आपकी तीसरा नाक है। हर इंद्रिय, इंद्रिय की अपना एक लिमिटेशन है, बाहर की दुनिया को सिर्फ जान सकता है, अंदर की कुछ नहीं जान सकता। अंदर की जानने की जो प्रोसेस है वो तीसरा होता है। दो आंखें हैं तो वो तीसरा है। वो जो तीसरापन है वो ज्ञान का प्रतीक है। वो आपके इंद्रिय ज्ञान नहीं, वो सेंशुअल नॉलेज नहीं, वो आपका इनर नॉलेज है, वो आपका इंटरनल नॉलेज है। वो शिव के साथ और एक आइकोनोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, उसको कहते हैं अर्धनारीश्वर। देखा होगा आपने डांस फॉर्म वगैरह में, भरतनाट्यम, ओडिसी वगैरह में। वो अर्धनारीश्वर क्या चीज होता है? नारी, लेडी, वोमैन, और ईश्वर पुरुष, आधा पुरुष है आधा स्त्री है। कंसेप्ट को समझिएगा। मूर्ति के चरणों में गिर जाना तो आसान है, कंसेप्ट समझ लीजिए आपके अंदर मूर्ति पैदा हो जाएगी। ये संसार दो अपोजिट चीजों से बना है, एक परमात्मा, एक ईश्वर पर पुरुष, ये संसार प्रकृति स्त्री है। आपका परिवार दो अलग अलग जेंडर से बनता है, एक पुरुष है एक स्त्री है। दो एक दूसरे से अलग नहीं है। आप अलग करके देखोगे आपकी फैमिली नहीं चल सकती है। जब वो एक होते हैं, जब एक ही सरनेम के साथ चलते हैं, जब एक ही फैमिली के साथ चलते हैं, तो एक सुंदर सी फैमिली बनती है। जब आप अपने अपने अलग अलग आइडेंटिटी बना के रखते हैं तो वो टूटा हुआ सा, बिखरा हुआ सा सेटर्ड फैमिली बनता है। जब आप एकाकार हो जाते तो वो फैमिली बड़ी खूबसूरत होती है, जहां पति की आइडेंटिफिकेशन आधा पत्नी से भी है, पत्नी की आधा आइडेंटिफिकेशन पति से भी है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। उस पत्नी के अंदर आधा पुरुष है, उस पुरुष के अंदर आधी पत्नी है। ये है अर्धनारीश्वर की कल्पना। कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, कोई यूनिक नहीं है, मिलावट की संसार है। तुम्हारे अंदर भी जो देखिए, इवन हमारी भाषाओं में भी जितने सॉफ्ट इमोशन है, करुणा, दया, सब फेमिनिन जेंडर है। जितने हार्ड इमोशन है, क्रोध, भय, द्वेष, सब मैस्कुलिन जेंडर है। हर इंसान के अंदर वो स्त्रीत्व है, पुरुषत्व है। पुरुष की स्त्रीत्व अगर को थोड़ा जगा दिया जाए, पुरुष महापुरुष बन सकता है। उसकी सॉफ्टनेस अगर जग जाए, स्त्री में अगर उस पुरुषत्व को जगा दिया जाए, फिर स्त्री कमजोर दुर्बल के रूप में नहीं जानी जाएगी, वो महान महिला के रूप में जानी जाएगी। समझने की बात है, उसको रिकॉग्नाइज करने की बात है, यही है अर्धनारीश्वर की कंसेप्ट। ये सारा संसार दो जेंडरों की मिलावट है, दो अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व का आधी हिस्सा महिला है, आधा हिस्सा पुरुष है। वो परमात्मा नारी और पुरुष का एक मेल है, वो पुरुष नहीं वो स्त्री नहीं, दोनों का मिलावट है। और एक बड़ा सुंदर कंसेप्ट हमारे यहां होता है, जितने भी अगर आप कोई प्राचीन भारतीय शास्त्रों को पढ़ें, इंडोलॉजी किसी भी फील्ड में, आप इंडियन आर्ट पढ़ें, ड्रामा के बुक्स पढ़ें, सब संस्कृत में आपको मिलेंगे। साइंस के बुक पढ़ें, लिंग्विस्टिक के बुक पढ़ें, आयुर्वेद के बुक पढ़ें, फिलोसफी के बुक पढ़ें, लॉ के बुक्स पढ़ें, जो भी प्राचीन भारत के किताबें हैं, मैं अंग्रेजी के नाम कहा पर उनके नाम संस्कृत में लॉ को धर्मशास्त्र कहते हैं, फिलोसफी को दर्शन शास्त्र कहते हैं, इकोनॉमी पॉलिटिक्स को अर्थशास्त्र कहते हैं, नाट्यशास्त्र ड्रामा को नाट्यशास्त्र वगैरह कहते हैं। कोई भी शास्त्र आप पढ़ें, उसमें जो नैरेशन चलती है, जो लिजेंड चलता है, जो हियर सेइंग चलता है, वो क्या चलता है कि ये शास्त्र कहां से शुरू हुआ? शिव से शुरू हुआ। जिसको वेद कहता है परमेश्वर समस्त ज्ञान का सोर्स है। पतंजलि कहते हैं शैष सर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, वो परमात्मा सबके गुरु है। उसी को पुराण कहता है, वो शिव है जो समस्त शास्त्रों का आदि है। आप किसी डांस वाले को, क्लासिकल डांस वाले को पूछो कि कौन है तुम्हारे डांस नृत्य की शुरुआत किसने किया, वो किसी आदमी का नाम नहीं बताएगा, वो कहेगा शिव से शुरू हुआ। किसी गाने वाले को, क्लासिकल गाने वाले को पूछो, बताओ तुम्हारी गाना कहां से शुरू हुई, किसने शुरू किया, पहला आचार्य कौन है, वो कहेगा शिव से शुरू हुआ। किसी व्याकरण पढ़ने वाले, संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले आचार्य से पूछो ये कहां से शुरू हुआ, कौन सा पहला आचार्य, बोले शिव से शुरू हुआ। किसी आयुर्वेद मेडिकल साइंस वाले से पूछो कि तुम्हारा पहला आचार्य कौन है, बोलेगा शिव से शुरू हुआ। वो परमात्मा सभी ज्ञानों का सोर्स है, इसीलिए वो आदि गुरु है। और ज्ञान का मतलब सिर्फ कोई हेवी फिलोसॉफिकल नॉलेज नहीं, आर्ट क्राफ्ट डांस ड्रामा फिलोसफी साइंस एवरीथिंग, नॉलेज के जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, जितने भी डायमेंशन हो सकता है, हर एक की जड़ में वही है। इसीलिए शिव का एक दूसरा रूप सामने आया, क्या आप देखते हैं कि वो एक योगी है, स्मशान में रहता है, पेड़ों के वो बर्क्स जो बलकल पहनता है, जानवरों के छाल पहनता है, गुफा में रहता है, योगी है, शादीशुदा है। आजकल तो ये नई ट्रेडिशन चला 500,000 साल से, सब बाबा बन जाओ, जिसको भी धर्म में इंटरेस्ट है सब बाबा बनो। ध्यान रखिए एक नॉन वैदिक कंसेप्ट है हर किसी को बाबा बनने की। जो लोग गीता क्लास में आते हैं वो काफी सालों से पढ़ रहे हैं कि सन्यासी मेंटली होता है, फिजिकली आप कुछ भी करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मन में बदलाव आ जाए। शिव उसका प्रतीक है कि आप परिवार वाले होकर भी प्योर योगी हैं, अंदर बदलाव लाओ, बाहर के ढकोसला मत करो। कपड़े बदलने से कोई अंदर नहीं बदलाव आता है, आप क्या कपड़े पहनते हो उससे आपका मन में परिवर्तन नहीं आता है, आप क्या आभूषण पहनते हो, क्या ऑर्नामेंट यूज करते हो, वो दिल आपके मन में परिवर्तन नहीं आता है। आप कुछ भी पहनो, अंदर क्या चल रहा है वो आपकी कैरेक्टर को डिफाइन करता है। क्या करते हो। यह उस वैदिक सिद्धांत का प्रतीक है कि गृहस्थ का योगी का अर्धनारीश्वर की तरह एक ही व्यक्ति में होना संभव है। आप बीवी बच्चे वाले हो या पति बच्चे वाले हो, आप भी योगी बन सकते हो। आप वॉलमार्ट में काम करते हो या बहुत बड़े कंपनी में सीईओ हो या मंदिर में रोज पूजा करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अंदर से योगी हो सकते हो। शिवरात्रि इज द सेलिब्रेशन ऑफ डार्कनेस। रात को सेलिब्रेट करते ना, रात भर लोग जागते भूखा रह के। इट इज द डार्केस्ट डे ऑफ द मंथ। फाल्गुन मास का नेचुरली अमावस्या के सबसे अंधेरा अंधेरा रात होता है। दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा व्यापक है, ऑल एनवलपिंग है, ऑल परवेडिंग है, वो है अंधेरा। यहां तो सूरज की रोशनी पड़ती है, जो महाकाश में जाते हैं वो कहते हैं सब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सूरज की रोशनी, तारे की रोशनी उस अंधेरे को चीरता है, पर अंधेरा नेचर है। अगर स्टार ना हो, सोलर सिस्टम ना हो, तो अंधेरा ही अंधेरा नेचर है। आपको अंधेरे में रहना नेचुरली है। उस अंधेरे के अंदर प्रकाश ढूंढने की आदत डालनी पड़ेगी। अंधेरे डरने की चीज नहीं है, द पार्ट ऑफ नेचर है। तुम्हारा अंदर भी अंधेरा ही है, पर जब तक तुम अंधेरे को जानोगे नहीं, एहसास नहीं करोगे, तुम उस लाइट को कैसे कैसे कदर करोगे, कैसे रिस्पेक्ट करोगे। खाने का स्वाद क्या है अगर आपको नहीं आ रहा है, कुछ दिनों से भूखा रहने की आदत डालिए, फिर देखिए खाना कितना मजा आने लगेगा। दिन भर तो चरते रहते हैं, आधे दो घंटे में, दो घंटे में, वो खाने का बढ़िया से बढ़िया खाने का मजा ही नहीं आता है। भूखा रहिए तभी पता चलेगा खाने का स्वाद क्या है। नींद क्यों नहीं आती है, बुढ़ापा पे नहीं आती, वो समझ में आता है, एज का फैक्टर होता है। तो जवानों को क्यों नहीं नींद आती है, क्यों? शरीर को थोड़ा थकाइए तब तो पता चलेगा नींद कैसी आती है। थकिए कभी, नींद के साथ परिश्रम का वही संबंध है, बिल्कुल पति और पत्नी जैसा। दोनों अपोजिट दिखते हैं पर एक के बिना दूसरा नहीं रह। आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो अच्छी मेहनत नहीं कर सकते, मेहनत नहीं करेंगे नींद अच्छी नहीं होगी। भूख और खाने का वही संबंध है, दो अपोजिट चीजें हैं, पर भूखा रहेंगे तभी खाने का मजा आता है। अंधेरे में ही आप दिवाली मनाते हैं, दिया का आनंद तो अंधेरे में ही है ना। शिवरात्रि में मतलब होता है कि अंधेरे में उस शिव को ढूंढो, दुख में सुख को ढूंढो, अंधेरे में प्रकाश को ढूंढो, बुराई में अच्छाई को ढूंढो। हम तो अच्छाई में बुराई ढूंढने की आदत पड़ चुकी है। कितने भी अच्छी लाइफ हो तो भी रोते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कितनी भी अच्छी सोसाइटी में रहे, लगता है ये बेकार है, ये बेकार है। अच्छाई में बुरे ढूंढने की आदत पड़ चुके हैं, क्योंकि अच्छाई में रहते रहते बोर हो चुके हैं, तो हर जगह बुराई दिखती है। कभी बुराई को फेस करिए तब आपको पता चलेगा छोटी छोटी अच्छाइयों की कितनी कीमत है। शिवरात्रि यही है कि रात में शिव को ढूंढो। In order to remove darkness, light is needed. इसलिए गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, अब चाहे तो मेरे साथ बोलिए बड़ा सुंदर श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने देखिए कितना कंट्रडिक्टरी लगेगा। जो सभी प्राणियों के लिए निशा है, निशा मतलब रात है, संयमी व्यक्ति, भक्त, योगी, स्पिरिचुअल व्यक्ति, सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति उसी समय जागता है। जिस समय सभी लोग, जहां पर सभी लोग जगे होते हैं, मुनि व्यक्ति उस समय, उसके लिए ये समय रात होती है। रात नशे का प्रतीक है, रात बेहोशी की प्रतीक है, रात किसी चीज में डूब जाने की प्रतीक है। सभी प्राणियों के लिए जो रात है, जिसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, दूर दूर की बात है, अंधेरे की बात है, डर लगता है, वो क्या चीज है? अंदर जाना है? खुद को जानने की कोशिश, ईश्वर को पाने की कोशिश, यही सबसे डरावनी चीज है। दुनिया में सारे रिलीजनों में तो यही सिखाते हैं, क्या गॉड फियरिंग बनो, कितना गलत सिखाते हैं है? फियर करो, भगवान से डरो। क्यों डरे भाई? जहां से लोगों को डर लगता है, भक्त योगी उसमें एंजॉय करता है। जहां आम आदमी जाता नहीं है, जिसके लिए, आम आदमी के लिए जो रात के समान है, अंधेरे के समान है, योगी उसी में जगा हुआ होता है। और आम लोग जिसमें जगे रहते हैं, किसमें? सांसारिक सुखों में, भोगों में। भक्त के लिए वो रात के समान है, जगे रहना, अवेयरनेस बना रहना। इसी शिवरात्रि के संबंध में और एक श्लोक देखिए, वो तो गीता का श्लोक था, ये वेद का, ऋग्वेद का मंत्र है। यो जागार तम ऋच कामयन्ते, यो जागार तम सामानियन्ते, यो जागार तामयम सोम आह तवाहम अस्मि सख्ये नौकाः। बड़ा प्यारा मंत्र, देखिएगा, वो कहता है जो जागता है उसी को ऋग कामना करता है, ऋग्वेद उसी को पाना चाहता है, जो जागता है सामवेद उसी में पहुंचना चाहता है, जो जागता है सामवेद उसको पूछता है कि मैं तुम्हारा बन जाऊं। जगा हुआ व्यक्ति मतलब जिसके अंदर अवेयरनेस बना रहता है, जो नींद में भी जिसकी अवेयरनेस बनी रहती है, जो बेहोशी में होश को बनाए रखता है, जो दुख में भी बेहोश नहीं होता, जो बहुत धनी ज्ञानी होने पर भी होश नहीं खोता, उसी को कहते हैं जो जागा हुआ व्यक्ति है। जागा हुआ व्यक्ति को ऋक विसाम का मतलब होता है ज्ञान, उपासना सब उसके पास होना चाहते हैं, हर अच्छी चीजें उसके पास होना चाहती हैं। इसीलिए शिवरात्रि को जागर रात्रि कहते हैं, जागने की। रात भर नशा खाकर जागने की, चाय पी करके जागने की जरूरत नहीं है देवियों सज्जनों। नींद आए तो सो जाना, मेंटली अवेयरनेस लाने की जरूरत है। पेट में भूखा रहने की जरूरत नहीं है, उपवास के नाम पर भूख लगे तो खा लेना। अंदर वो फीलिंग पैदा करना कि उपवास, मैं उसके नजदीक हूं, वो मेरे अंदर है, वो रियलाइजेशन आपको वहां तक ले जाएगा। और शिवरात्रि और एक कारण से आर्य समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण का दिन है, क्योंकि शायद ये शिवरात्रि ही थी जिसके कारण आर्य समाज बना। छोटे उम्र का 13-14 साल का मूल शंकर, देखिए नाम भी उनका मूल शंकर था, दयानंद जी का शंकर, शिव के नाम। और शिवरात्रि के दिन उनके घर वाले भी शिव भक्त थे, तो नेचुरली शिव मंदिर में वो रात भर जागना पड़ता है भूखा रह करके, तो पापा ने बोला आप भी जागोगे तो वो भी जागे रहे। बोले जागने से क्या होता है, जैसे अमेरिका में रहने वाले आपके बच्चे भी आपको बहुत तंग करते हैं धर्म के बारे में पूछ पूछ के, और आपके पास जवाब नहीं होता है क्योंकि आप उठपटांग काम करते हैं और बिना सोचे समझे करते हैं। भारत के बच्चे तो पूछते ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, पर आप तंग होते हैं क्योंकि आप जो करते हैं आपके पास उसका आंसर नहीं होता है। तो मां बाप को पूछा कि ये रात को क्यों जागते हैं, तो जागने से ईश्वर का दर्शन होता है। तो मूल शंकर को लगा चलो मैं भी जग जाता हूं, 12 बजे तक घर के लोग सब धीरे धीरे सो गए, गए थे तो जागने के लिए तो सब सो गए, पर मूल शंकर सोया नहीं, जगा रहा। पता नहीं कब ईश्वर शिव दिखाई देने लग जाए। रात भर दिखाई नहीं दिया। 1-2 बजे जब सब सो गए, मंदिर में शिवलिंग के ऊपर प्रसाद वगैरह रखा हुआ था, चूहा आकर चढ़ने लगा, प्रसाद खाने लगा, शिवलिंग के ऊपर चढ़ने लगा, कूदने लगा। तो मूल शंकर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको तो देखना है, बच्चा है, समझना है क्या हो रहा है। देखा चूहा आधी रात को, ईश्वर तो दिखाई नहीं दिया, चूहा दिखाई दिया, प्रसाद खाता था, शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता था, सुसु करता था, पटी करता था। उसके दिमाग में आया कि अगर ये मूर्ति ईश्वर होता, ये चूहे को तो रोक सकता था। चूहा तो छोड़िए देवियों सज्जनों, सोमनाथ मंदिर को 18 बार तोड़ा गया, कोई सोमनाथ आकर रोका तो नहीं ना, बचा नहीं पाया। हजारों लाखों मंदिर को तोड़ दिए विधर्मियों ने, हिंदू विरोधियों ने लाखों मंदिर को तोड़ा, कोई मूर्ति से भगवान आकर तो बचाया तो नहीं ना। स्वामी दयानंद को 13-14 साल की उम्र में फील हुआ। उसने अगले दिन सुबह पूछा, ये क्या चूहा कूद रहा था तो भगवान तो बचा नहीं पाया, क्या करेगा ऐसा भगवान। उस दिन लगा, नहीं, ये जो चल रहा है भगवान के नाम पर, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, मुझे तो भगवान जानना है, मुझे उस शंकर के मूल तक जाना है। उनका नाम मूल शंकर है देवियों सज्जनों, मुझे उस शंकर के मूल तक जाना है, इससे तो मुझे नहीं मिलने वाला मंदिर में पूजा कर करके हजारों साल तक भी। मुझे 30 साल तक हिमालय से लेकर नदी के किनारे तक भटकते रहे, साधनाएं करते रहे, शास्त्र पढ़ते रहे, जब ज्ञान हुआ तो प्रचार में लगे, और जो सत्य लोगों के सामने रखा ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि जब आप खास ढर्रे में पड़े हुए हो, एक खास ट्रेडिशन में ढले हुए हो, आपको सच्चाई पसंद नहीं आएगी। कोशिश करते रहे और तब आर्य समाज का, उसी दयानंद की देन आर्य समाज है, हम आज बैठे हैं। वो शिवरात्रि का दिन था जो उनके अंदर वो भाव जगाया कि मुझे वो असली शंकर को ढूंढना है। आज के इस शुभ अवसर पर, जो अभी 2-3 दिन पहले शिवरात्रि बीती, हम भी यही आशा करते हैं कि ये रात जब हम शिवरात्रि अगले बार मनाएं, इस भावना के साथ बनाएं कि वो रात्रि हमारी जागरण की रात्रि हो, हमें जगाने की रात्रि हो, अपने बारे में, अपने मूल सत्ता के बारे में, इस संसार के मूल के बारे में, उस शंकर के मूल के बारे में। यजुर्वेद के वो जो 6 मंत्र आप लोग पढ़ते हैं, शिव संकल्प मस्तु, उसमें भी शिव है जी, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, हर श्लोक मंत्र के आखिर में ये आता है, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला बने। शिव मतलब वो नागधारी इमेजिनरी देवता नहीं, वो पवित्र बने, शुद्ध बने। मेरे साथ मिलके 2 मंत्र, ये 2 मंत्र बोलिए। यज्जाग्रतो दूरमुदेति दैवम् तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वेकिंग पर्सन्स माइंड, ये मन की अवतारणा है। वेकिंग पर्सन्स माइंड व्हिच एंडोयड विथ डिवाइन वर्च्यूज मूव्स फार एंड हाई, दैट ऑफ ए पर्सन अस्लीप मूव्स इन द सेम वे। आप जगे हुए या सोए हुए, आपका मन हमेशा फंक्शन करता है, रेसिंग फार एंड वाइड, एंड द सोल एनलाइटनर ऑफ ऑल द सेंसेस। मे द माइंड ऑफ माइन बी ऑलवेज गाइडेड बाय द बेस्ट ऑफ इंटेंशन शिव संकल्प। और एक सुशारथिश्वानी वयन मनुष्यान्ने नियते विशुभिर्वाजिन इव प्रतिष्ठां यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वो जो मेरा मन विच लीड्स एंड कंट्रोल्स मेन लाइक ए स्किलफुल चैरिटियर, स्पीडी हॉर्सेस एज इफ यू होल्डिंग देम बाय द रेन्स व्हिच इज वेल प्लेस्ड विद इन द हार्ट व्हिच इज फ्री फ्रॉम डिके एंड इज द स्पीडेस्ट ऑफ ऑल मे दैट माय माइंड बी ऑलवेज गाइडेड एट द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस। आज की अवसर पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारा मन वो शिव संकल्प वाला हो, हम उस असली शिव को पा सकें, फिर जीवन सचमुच मंगलमय हो जाएगा। इसी के साथ यही विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।